मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः प्रणमीणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवलीसुत केवलीवणिनम्।
यह नियमसार नामक जो शास्त्र है उसके हम 38 नंबर की गाथा देख रहे हैं। यह जो गुरुदेव के जो प्रवचन है उसके प्रवचन रत्न चिंतामणि नाम से दूसरा भाग प्रसिद्ध हुआ है, उसका पृष्ठ क्रमांक 20 पर हम आए हैं। अभी क्या कहते हैं देखो, यहां पर स्वमा जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, क्या कह रहे हैं? स्वमा जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, यानी जो स्व को जानने में ही अति आसक्त है, उसी में लीन रहते हैं, उनको क्या कहा कि स्वद्रव्यमा जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे। तो ऐसे कौन हो सकते हैं? तो मुनिराज। तो स्वद्रव्य जे त्रिकाली ध्रुव छे, यानी स्वद्रव्य कैसा है उसकी भी बात यहां समझा दिए कि वो त्रिकाली है और वो कैसा है, ध्रुव है, सदोदित टिकने वाला, कायम रहने वाला। ऐसा जो स्वद्रव्य त्रिकाली ध्रुव छे तेमा मुनिनी तीक्ष्ण एटले सूक्ष्म एटले झीनी बुद्धि छे। अहिया स्वद्रव्य ने पकड़े तेने ज तीक्ष्ण बुद्धि कहे छे। बारमा काम करे तेने बुद्धि ज कहता नहीं, बुद्धि अने ज्ञान ज कहता नहीं। स्वद्रव्य एटले पर्याय विनानो भगवान आत्मा, क्या कहा? स्वद्रव्य ने क्या कि जो पर्याय विनानो जो त्रिकाली एक सदृश ऐसा जो स्वभाव भाव है उसको यहां स्वद्रव्य कहा है। उसमें पर्याय है ही नहीं, ना के शुभ पर्याय है, ना अशुभ पर्याय है, ना शुद्ध पर्याय है, तीनों को उड़ा दिया। ध्यान में आया? नहीं ध्यान में आई बात? क्या कह रहे हैं देखो, यहां तो कह रहे हैं जो पर पदार्थ है अजीव, अरे जीव की भी जो एक समय की पर्याय है उसको भी पर्याय गिना, और वो भी स्व स्वभाव में नहीं है। ऐसा कहा अजीव यानी पर पदार्थ की पर्याय जो है, जो आश्रव यानी शुभ अशुभ परिणाम रूप जो आश्रव की पर्याय है, शुभ पर्याय या अशुभ पर्याय, इसके बाद संवर निर्जरा यानी जो शुद्ध पर्याय है, और जो मोक्ष यानी परिपूर्ण शुद्धता रूप जो पर्याय है वह भी मैं नहीं हूं, वह भी मेरे में नहीं है। मैं तो त्रिकाली एक जैसा कायम ध्रुव टिकने वाला ऐसा जो हूं, पर्याय विनानो एवो भगवान आत्मा, ऐसा कहा। तो कहे छे कि मुनि परती खस्या ने स्वद्रव्य ने पकड़वामा तेमनी बुद्धि तीक्ष्ण थई, एटले के परद्रव्य ने स्वद्रव्य ने पकड़वा माटे तेमनी बुद्धि तीखी छे। ज्ञाननो पर्याय स्वद्रव्य ने पकड़वा माटे तीक्ष्ण थई गयो छे। भाई वात आकरी छे। आहा, वर्तमान पर्याय मां जे सात प्रकार तत्व छे तेमा एकत्व बुद्धि ते पर्याय बुद्धि छे, अने ते पर्याय बुद्धि अंश बुद्धि छे। ते अंश बुद्धि ने छोड़ी ने जेने अंतर स्वरूप पूर्णानंदमय त्रिकाली भगवान आत्मा मां बुद्धि लगावी छे तेनी स्वद्रव्य मां तीक्ष्ण बुद्धि छे। सात तत्वरूपी परद्रव्य थी ते परांगमुख छे, अने स्वद्रव्य थी सन्मुख छे। हाँ हाँ 21 नंबर का पेज फर्स्ट लाइन आहा हा भाषा टूके ने भाव ऊंचा पण जुओ ने अंदर टीकामां ज छे ने के परद्रव्य थी जे परांगमुख छे। परद्रव्य यानी इसको किसको लिया, परद्रव्य किसको कहा? हाँ मिलिंद भाई, सात ही तत्वों को, हाँ जीवादि सात तत्वों को परद्रव्य कहा, उससे परांगमुख और स्वद्रव्य में सन्मुख। भाषा तो जो कहे छे टूकी भाषा छे ने भाव ऊंचा छे के परद्रव्य थी जे परांगमुख छे। सात प्रकारना पर्याय थी मुनिए लक्ष्य छोड़ी दीधु छे अने स्वद्रव्य में जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे पूर्ण अमृतनो सागर एवा भगवान आत्मा में तीक्ष्ण बुद्धि छे। आहा वर्तमान बुद्धि कहो अथवा जेने अहीं बहिर्तत्व कहेवामां आव्युं छे ते वर्तमान ज्ञाननो पर्याय कहो एक ज छे। तो जेनी तीक्ष्ण बुद्धि स्वद्रव्यमां छे, स्वद्रव्य त्रिकाळी द्रव्य छे अने तेमां तीक्ष्ण बुद्धि ए पर्याय छे। कुछ प्रश्न है? कौन सा? बोलो बोलो। देखो देखो अभी क्या कहते हैं, ये आहा लिखा ना ऊपर से चौथी लाइन में, उधर से पढ़ते हैं। देखो वर्तमान बुद्धि कहो अथवा जेने अहीं बहिर्तत्व कहेवामां आव्युं छे ते वर्तमान ज्ञाननो पर्याय कहो। अभी क्या कहते, बुद्धि कहो या ज्ञान कहो, वो कैसा है? पर्याय ज्ञान कहे। तो पर्याय ज्ञान यानी पर्याय का जो ज्ञान, उसको पर्याय ज्ञान कहा। तो वो क्या है? तो वो एक ही है, मतलब वो सब बहिर्लक्षित परिणाम है। अब कहते हैं जेनी तीक्ष्ण बुद्धि स्वद्रव्य में छे, यानी जो अपने स्वरूप का ही आश्रय लेता है, उसी में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है और उसमें सक्सेसफुल है, उसकी बुद्धि कैसी है? तीक्ष्ण है। क्योंकि वो आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा को ग्रहण करने के लिए, यानी आत्मा में एकाग्र होने के लिए उनका प्रयत्न चल रहा है और उसमें वो वारंवार सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उनकी बुद्धि कैसी है? तीक्ष्ण है। तो स्वद्रव्य में लगी हुई बुद्धि को तीक्ष्ण कहा है। तो जेनी बुद्धि स्वद्रव्य में छे, यहां तक तो समझ में? अब कहते हैं स्वद्रव्य थे त्रिकाली द्रव्य छे। स्वद्रव्य कैसा है? तो जो त्रिकाली है अने तेमा तीक्ष्ण बुद्धि, यानी उसको ग्रहण करने वाला कौन होगा? पर्याय होगी। तो वो पर्याय है, तो एमा तीक्ष्ण बुद्धि ए पर्याय छे। और आगे की बात जो पहले उन्होंने बताई है, ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि का आधार नहीं लेना है, आधार तो त्रिकाली द्रव्य का लेना है। क्योंकि पर्याय का आधार नहीं, क्योंकि वो स्वद्रव्य में नहीं है। वहां ऐसा बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप को जो धर्म की पर्याय है वो स्वभाव में नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो त्रिकाली है, पर्याय तो एक समय की है। हाँ सर, द्रव्य की सन्मुखता होनी चाहिए। तो द्रव्य में सन्मुखता करने वाली पर्याय जो होगी वो तो धर्मरूप होगी कि नहीं? तो वो धर्मरूप पर्याय स्वभाव में नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्या ख्याल में है भाई? थोड़ी सी कसरत है, बुद्धि को खींचातानी करनी पड़े, ऐसी बात है। लेकिन समझ में आवे उसमें क्या है, खोटी बात नहीं। देखो फिर से कहा, स्वद्रव्य ए त्रिकाली द्रव्य छे अने तेमा तीक्ष्ण बुद्धि, यानी तीक्ष्ण बुद्धि यानी उसको ग्रहण करने की जो पर्याय है ये तो पर्याय छे। आहा पहला मुनिराज ने प्रति परांगमुख कह्या ने, तो त्यारे प्रति परांगमुख थया त्यारे द्रव्य बुद्धि थई अने ते द्रव्य बुद्धि ने अहीं तीक्ष्ण बुद्धि कहेवामां आवी छे। अहीं तो सात तत्वों ने पण परद्रव्य कह्या छे, अर्थात पोतानो पर्याय जे मति ज्ञान आदि रूप उघाड़नो छे तेने पण परद्रव्य कह्यो छे। अरे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो छोड़ो, केवल ज्ञान ने पण पर्याय परद्रव्य कह्यो छे। केम? पर्यायगत छे। તેનાથી પરાંગમુખ થઈને જે જ્ઞાનની બુદ્ધિ સ્વદ્રવ્યમાં લાગી છે તેને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ કહેવામાં આવી છે. બાકી જે આ દુનિયાના મોટા વકીલો, ડોક્ટરો કે 20-25 લાખના રણનારા હોશિયાર વિચિક્ષણ ઢાયા પુરુષો કહેવાય છે, તેમની બુદ્ધિને તો મૂર્ખ બુદ્ધિ, પાખંડ બુદ્ધિ કહેવાય છે. અભી પરસો કોઈ થા ના કે આતે 500 રૂપિયા લાયા ઓર ઇધર કિતના 1000 કરોડ જમાયા, તો બોલતે મૂર્ખ બુદ્ધિ છે. અરે જીસને ઉસકી તો ખાલી બાત સમજાને કે લીએ. અરે હમ ભી તો ક્યાં હૈ, મૂર્ખ બુદ્ધિ હૈ જીસને અપને સ્વરૂપ કો નહીં જાના હૈ, ઓર બાકી ઇસમે હો હા કર રહા હૈ, તો કહેતે વો ભી પાખંડ બુદ્ધિ કહેવાય છે. લીએ મૂર્ખ બુદ્ધિ છે. આય તો ભાઈ આ છે, તમારે માનવું હોય તો માનો, નહીં તો ઘર ભેગા તો એમ કહે છે. પ્રશ્ન, આટલું કમાઈએ છીએ તો અમારું ડાપણ છે નહીં? અમારું ડાપણ છે ને કે મૂર્ખાઈ જે સાંભળને બહુ બગબગ નહીં કરે એમ કે છે. જેમાંથી શાંતિ ન મળે તે બુદ્ધિ કેવી? જે બુદ્ધિમાંથી દુઃખ મળે એવી તારી બુદ્ધિને કેવી કેવી? ક્યા કહેતે હૈ, જીસમે સે તુમે સુખ નહીં મિલતા હૈ ઓર દુઃખ હી મિલતા હૈ, ઉસ બુદ્ધિ કો ક્યા કહેના? યાની કુછ કહેને લાયક હી નહીં હૈ. ક્યા કહેને કા અર્થ હૈ કે ભાઈ નોર્થ વર્થ ટોકિંગ અબાઉટ. પૈસા વાળા હોઈએ તો બધા સામુ જુએ, પૈસા ન હોય તો શું કોઈ સામુ જુએ? ગરીબ માણસની સામુ શું કોઈ જોવે? સભામાં પણ પૈસા વાળા હોઈએ તો આગળ બોલાવે કે આવો આવો, પણ ગરીબ માણસને શું કોઈ બોલાવે? આમ તો પિનાંગભાઈ કો બોલે આવો આગળ બેસ. ધૂળે નથી સાંભળને, તારા પૈસા શું છે, તેની કિંમત શું છે, અને લોકો તને બોલાવે તેથી તને શું થયું, એટલે શું મળ્યું, એ તને શું વળ્યું, બધું લઈ લ્યો એની હાથે. હું પ્રશ્ન કરતા બી સાદા સુધા નહીં. પૈસા અમારી હોશિયારીથી કમાઈએ છીએ ને, વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા કરવામાં અમારી બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ છે, ત્યારે તો અમારે 5-10 લાખ પેદા થાય છે. એ તો 40 સાલ પહેલી કી બાત હૈ, તો આજ કા સમજ લેના 50 લાખ 1 કરોડ. મૂરખ છો? અહીંયા તો આ વાત છે ભાઈ, અહીંયા તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ તેને કહે છે કે જેને વર્તમાન પર્યાયના અંશની બુદ્ધિ છોડીને સ્વદ્રવ્યમાં બુદ્ધિ લગાવી છે. ક્યાં કહા કે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ કોને કહેવાય? કે જેને વર્તમાન પર્યાયના અંશની બુદ્ધિ છોડીને સ્વદ્રવ્યમાં બુદ્ધિ લગાવી છે. કોઈને દુનિયા વિશે જ્ઞાનનું પણ કોઈને દુનિયા વિશેષ જ્ઞાનનું ન પણ હોય, દુનિયા વિશેષ જ્ઞાનનું પણ ન હોય, કે હા દુનિયાનું વિશેષ જ્ઞાન ન પણ હોય. અરે આ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ વિશેષ ન હોય તો પણ તેની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. યાને ક્યાં કહેતે, બહુત શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન હુઆ તો ભી ઉસસે કોઈ કામ નહીં હોને વાલા, તો પણ તેની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. પરંતુ જેને પોતાની વર્તમાન તીક્ષ્ણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિને મહાસત્તા અર્થાત ત્રિકાળી શાશ્વત ધ્રુવ એવા નિજ આત્મામાં લગાવી છે તે ધર્માત્મા છે. આહા, દુનિયા સાથે વિતરાગનો મેળ ખાવો મુશ્કેલ છે, કેમ કે બંનેની વાત એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે. જો ભાષા કેવી લીધી છે કે સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે એવા આત્માને, આત્માને જેને લક્ષમાં લીધો છે એવા આત્માને, ક્યા ક્યા અર્થ ક્યા ક્યા? સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે ઉસકા અર્થ ક્યા ક્યા? આત્માને જેને લક્ષમાં લીધો છે એવા આત્માને. ભાઈ आ तो अंतरनी वातो छे के जेने कदी सांभळी नथी। बहारनी वातो सांभळीने तो खुशी थई गयो छे के आपणे धर्म करीए छे। भाई ते धर्म कर्यानुं अभिमान कर्युं छे पण धर्म कर्यो नथी। केम के धर्म करे तो तेना जन्म मरणनो अंत आव्या विना रहे नहीं। पूजा भक्ति दयादान व्रत मुनिपनु ने त्याग एवी क्रिया तो अनंत वार धारण करी छे। छड़ामां आवे छे ने के क्या कहते हैं धर्म करे नो अभिमान कर्यो छे पण धर्म कर्यो नथी। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान विना सुख लेशन पायो। मुनिव्रत धार एटले के नग्नपनु अनंतवार लीधुं। पंच महाव्रत नो विकल्प पण अनंतवार कर्यो परंतु तेमा शुं थयुं। क्या आत्मा क्या छे? भगवान आत्मा तो विकल्प थी अने एक समय ना पर्याय थी पण पार छे। अहीं शुं कहेवुं छे के स्वद्रव्यमां जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे एवा आत्माने आत्मा खरेखर उपादेय छे। भाई आम कहेवुं छे स्वद्रव्यमां तीक्ष्ण बुद्धि कर्या वगर आत्मा उपादेय आत्मा उपादेय एम विकल्प करवाथी आत्मा उपादेय नहीं थाय। अर्थात आत्म वस्तु छे ते उपादेय आदरणीय छे अने सात तत्वो हेय छे। परंतु ते कोने माटे छे के जेनी तीक्ष्ण बुद्धि स्वद्रव्यमां लागी छे तेने आत्मा उपादेय छे। आत्मा उपादेय छे नो अर्थ शुं? कई विकल्पथी के शब्दथी घोकू छे के आत्मा उपादेय छे ने आ सात तत्वो हेय छे કે ના? એ તો અંતર વસ્તુ ત્રિકાળી ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મામાં એટલે નિત્ય એવા મહાભગવાન આત્મામાં જ્યાં તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ લાગી ત્યાં તે આત્માને આત્મા ઉપાદે થઈ જાય છે અને તેથી એવા આત્માને એમ લીધું છે। એ તો એક બાર મેં એક ઉદાહરણ પઢા થા वो बार बार मुझे अभी याद आ रहा है इसलिए बता देता हूं। किसी आदमी को कुर्सी पर बिठाकर उसको हाथ पैर से बांध के रखा है और वो तो बार बार सोचता है कि मुझको बांध के रखा है मुझको बांध के रखा है मुझको इसमें से छूटना है। ऐसा बार बार वो सोचता है बार बार बोलता भी है लेकिन सिर्फ सोचने से और बोलने से क्या उससे वो छूट जाएगा? तो जब तक पुरुषार्थपूर्वक उद्यम नहीं करेगा जब तक तो उसमें से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे कहते हैं कि यहां बार बार मैं आत्मा उपादेय हूं बाकी ये है मैं आत्मा उपादेय हूं बाकी ये है ये बोलने बोलने से सिर्फ उसके बाद में चिंता चिंतन करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक वो स्वरूप में एकाग्र नहीं होता है उपादेयपना जो जिसको हमारे देवेंद्र भाई बोलते ना प्रैक्टिकल करवा छे तो ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता है अन्य कोई बात नहीं होती। देखो भाई आत्मा को कैसा पकड़ना कैसे उसमें स्थिरता लाना ये तीर्थंकर भी नहीं बता पाए। वो तो अनुभव गम्य बात है। अभी वैसे तो समयसार में बताया कि मति ज्ञान जो है वो जो अन्य अन्य जगह पर लगा हुआ है उसको समेट कर और जो श्रुत ज्ञान है वो नयात्मक विकल्पात्मक इसमें जाल में फंसा हुआ है वहां से वो समेट कर वो अपने स्वरूप में लगा। इतना ही बताएंगे डायरेक्शन देंगे अभी वो कैसा करना क्या करना वो तुम्हारा काम है। ख्याल में यानी ऐसा ही कहते कि तुम्हारा जो उपयोग है वो पर पदार्थों में जो लगा पड़ा है उसमें से हटाकर तो में लगाना ये तो मार्गदर्शन हुआ। लेकिन मार्ग तो हमें आक्रमण करना है ना मार्ग पर तो हमें चलना है और वो चलना यानी क्या करना फिर वही बात चालू होती है। बहुत मतलब ये ऐसी बात है कि वो तो भैया अनुभव गम्य है, दूसरा कुछ नहीं बोल सकते। और इसके लिए स्व की बारंबार खातरी होनी चाहिए कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ज्ञान आनंद मेरा स्वभाव है। और हम ये कभी भी नहीं भूलते कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ या पर का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी हमारी मान्यता है। पर में यानी पर तो छोड़ो, ये शरीर का मैं करता हूँ ऐसा ही मानता ही है, और लंबी की बात ही छोड़ो, और शरीर रूप ही मैं हूँ। खाली बोलने से क्या है, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, अरे ये तो खाली बोलने की बात रही। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसी कतई ज्ञान तो बिल्कुल है कि मैं राग से भिन्न हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं अनंत पर पदार्थों से भिन्न हूँ। माहो माही एक दूसरे को समझावे भी हम, पर वो बात ऐसी है कि वो अंतरंग में जब तक नहीं उतरती है, श्रद्धा में नहीं उतरती है, तब तक तो बात आगे बढ़े नहीं ऐसी है। तो इसलिए कह रहे हैं अंतर वस्तु, नीचे से छठी लाइन है ना लिखा है ना उसके आगे, ये तो अंतर वस्तु त्रिकाणी चिदानंद प्रभु आत्मा मां नित्य व महाभगवान आत्मा मां जहां तीक्ष्ण बुद्धि लागी, जहां ते आत्मा ने आत्मा उपादे थई जाए छे, अने तेथी एवा आत्मा ने एम लीधु छे के कौन सा आत्मा की जो अपनी बुद्धि सो में लगा रहे, एवा आत्मा ने आत्मा उपादे छे। ओहो टीका पण भारे गजब टीका हो, गजब वात छे। दिगंबर संतोए अलौकिक काम कर्या छे, आचार्यों की कथन शैली तो जुओ। आत्मज्ञानी एटले ध्यानी, आत्मा मां मस्त एवा दिगंबर मुनि ने विकल्प आव्यो अने आ शास्त्रो शास्त्रना कारणे रचाई गया। तेवो शास्त्रना रचनारा छे नहीं, तेवो एटले ए मुनिराज एटले टीकाकार अने ओरिजिनल कुंदकुंद आचार्य। आ तो भगवान धीमे धीमे समझवानी अंतरनी चीज छे, आ कई बार नी कथा वार्ता नथी। अहो भगवान तारी जे त्रिकाळी चीज छे ते स्वद्रव्य छे, अने एक समय ना पर्याय रूप जे सात भाव एटले तत्व छे ते परद्रव्य छे, तेमज ते स्वद्रव्य उपादेय छे ने परद्रव्य हे छे, एम तो प्रथम कह्युं। हवे कहे छे के जे स्वद्रव्य उपादेय छे ते कोने उपादेय छे, के जेनी पोतानी तीक्ष्ण बुद्धि ने स्वद्रव्य मां लगावी छे तेने, एटले के स्वद्रव्य मां तीक्ष्ण बुद्धि लगावनार ने आ आत्मा आदरणीय छे, आदरणीय थाय छे। भगवान आवी वात छे समझवामां आवे छे। श्रोता भगवान ना समोचरण मां जे वात आपे सांभळी हती ते वात अहींया अमोने आप संभळावी रह्या छो। और आगे अरे धर्मरत्न भगवान आत्मा पूर्णानंदनो नाथ छे, तेने उपादे करवा एक समयना पर्यायनू, पर्याय एटले अवस्थानू जेमा कार्य थाय छे ते पर्यायनू पण लक्ष्य छोड़ी दे एम कहे छे। अने जेने पर्यायनू लक्ष्य छोड़ीने आनंदकंद ध्रुव कारण परमात्मा कारण जीव शुद्ध परम स्वभाव भाव त्रिकाळी एक रूप प्रभु भगवान आत्मा मां तीक्ष्ण बुद्धि लगावी छे, एवा समकीति ने आत्मा उपाधि छे। अभी देखो यहां अपने स्वभाव का वर्णन अलग अलग विशेषणों से बताया, और ये सारी बातें अपने पहले अधिकार जीव अधिकार में हुई है। क्या क्या कहा है कि जेने पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी ने आनंद कंद थर्ड लाइन, ध्रुव ये अपना स्वभाव कैसा है तो अनंत आनंद से भरा हुआ है, इसका कंद है घनपिंड है ध्रुव है, कारण परमात्मा है उसे ही कारण जीव कहा है, शुद्ध परम स्वभाव भाव उसी को कहा है, और त्रिकाळी एक रूप प्रभु भगवान आत्मा मां तीक्ष्ण बुद्धि लगावी छे एवा आत्मा ने कहो के समकीति ने आत्मा उपादेय छे। આવો માર્ગ છે. સમજવામાં ન આવે, કઠણ લાગે તો પણ માર્ગ તો આ છે. કોઈ એમ કહે છે કે પણ માર્ગને સરળ કરી દો, સરળ કરી દો ને ભાઈ, માર્ગ તો જે હોય તે જ આવે ને, કે ન હોય તે આવે. ये देखो गुरुदेव के ऊपर बहुत ऐसा आरोप लगाते थे, जो इतना सेलो ने सट मार्ग छे उसको उन्होंने बहुत कठिन बना दिया. अरे वो कठिन इसकी अपेक्षा से है कि तूने आज तक उसका कभी प्रयत्न किया नहीं, अनुभव किया नहीं. लेकिन अपनी ही चीज अपने को प्राप्त करना, इससे और सरल बात क्या है? कहीं दूसरे की चीज प्राप्त करना तो कठिन है, और यहां तो ऐसा वस्तु स्वरूप है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेशता ही नहीं है. तो दूसरे की कुछ कार्य करे या दूसरे की चीज उठा के लावे, ऐसा तो तीन काल में शक्य नहीं है. फिर भी जीव को अपने ही स्वरूप में टिकना, ये तो कठिन हो गया है. क्योंकि वो परमे में कुछ कर सकता हूं ऐसी उसकी मान्यता चली है, भ्रम चला है, और उसके कारण वो कठिन हो गया ऐसा कह रहे हैं. वास्तव में तो कैसा है कि जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, मेरी सत्ता है, उसका स्वीकार करना है बस. और क्या करना है? क्या तलवार लेके सबको खटाखट खटाखट खा उड़ाने का थोड़ी है किसी को? ये तो अपने को ही अपने से लड़ना है, यानी अपने को ही अपने दोषों से, अपने विकारी भावों से, अपनी खोटी मान्यताओं से लड़ना है. यानी क्या? उसको समझना है कि ये गलत है, और लड़ना है ना क्या करने का, और उसका जो हम अभी तक उसको जो पंपाल रहे हैं ना, वो पंपालना छोड़ देने का, और क्या है. लेकिन यही बात होती नहीं है, अनादि से हुई नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं कठिन है. क्योंकि पहले तो बता, आओ तो कोई मार्ग सांभड़े नहीं, और सांभड़े तो ध्यान आपे नियम से. तो कहते हैं कोई एम कहे कि अपन मार्ग ने सरल करी दियो ने भाई, मार्ग तो जे होए ते आज छे, ने न होए के न होए ते आवे प्रश्न. पण आ बाहर नी क्रिया करिए छे तो तेमा धर्म आवी जाए ने, ए तो विपरीत मार्ग छे. तेमा धर्म के मार्ग क्या है वो? आवी चीज छे. अरे भगवान, तू महाप्रभु पने विराजी रहो छो, અનાદિ અનંત એવો તું ધ્રુવ ન્યાયક ભાવ, એક સમયના પર્યાયથી પણ વેગળો દૂર છો. અહીં તે પર્યાય રૂપ સાત તત્વોને હેય કહ્યા છે, અને આવા આત્માને ઉપાદેય કહ્યો છે. તો આત્માને ઉપાદેય કહીને એવું કહેવું છે કે જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ વર્તમાનમાં આત્મામાં ગઈ છે, એવા આત્માને આ આત્મા ઉપાદેય છે. આહાહા, જુઓ ને, શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યની સમયસાર ગાતા છ ની ટીકાનું અહીંયા અનુસરણ કર્યું છે ને. સંતો દિગંબર મુનિઓ એ તો ગજબ કામ કર્યા છે. તેમને એક એક શબ્દ, એક એક ગાથા, એક એક ટીકા ગજબ છે. પણ સંતો દિગંબર મુનિઓ એટલે આત્મધ્યાની જ્ઞાની દિગંબર મુનિઓ, એકલા લુગડા કાઢીને માત્ર દિગંબર, થાય તે નહીં. લુગડા એટલે વસ્ત્ર, વસ્ત્ર વિકલ્પની ક્યા હૈ? એ મરાઠી લોકો કો યે શબ્દ થોડા સા ખટકતા હૈ. લુગડા કા અર્થ હોતા યે સાડી, ઓર હિન્દી લોગ तो साड़ी को धोती भी कहते हैं. ये सारी गड़बड़ी, हर एक भाषा का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है ना. तो लुगड़ा का मतलब वो साड़ी हो गई. तो मुनिराज तो कोई मतलब पुरुष तो कोई लुगड़ा नहीं पहनता है, यानी साड़ी नहीं पहनते. तो लुगड़ा का अर्थ वस्त्र है. लुगड़ा फेरवे एटले वस्त्र. अभी वास्तव में तो ऐसा है, लुगड़ा फेरा एटले वस्त्र बदली किया. पहले कलरफुल पहनता था, अभी सफेद हो गया, उसके लिए वो मिला. अभी यहां क्या लिखा है देखो, वस्त्र तो लुगड़ा काढ़ीने, यहाँ काढ़ीने की बात है, कभी कभी फेरवीने की बात आती है, यानी वो तो उधर के लोगों की बात है। विकल्प नहीं, देखो बात तो ऐसी, उनको ये समझाना है मुनिपद जो होता है वो मुनिपद तो अंतरंग में जो तीन कषाय के चौकड़ी के अभावपूर्वक वितरकता है उसी को मुनिपना कहा है। ना के मुनिपद बाह्य अवस्था शरीर की अवस्था से है, ना के अंतरंग में रहने वाले 28 मूलगुण पालने रूप जो कषाय भाव है उसके कारण उनको मुनिपना नहीं है। उनमें जो वितरकता वर्तती है वह मुनिपना है। तो कहते हैं विकल्पनी लागनी ए एक समय ना पर्यायनु पन लक्ष्य छोड़ी ने, क्या कहा, विकल्पनी लागनी यानी विकल्प में जो अधिक अधिक जो रम्माण होता है वो, अने एक समय ना पर्यायनु पन लक्ष्य छोड़ी ने अंदर ध्रुवमा जेनी दृष्टि लागी होय तेने सम्यक दृष्टि दिगंबर कहे छे, अने पची स्वरूप में विशेषलीनता थता जेने प्रचुर आनंदनु संवेदन प्रकट थयू होय तेने जैन दर्शन में सत्य दर्शन में मुनि कहेवामां आवे छे। देखो भाई मुनि किसको कहना, ये जो बात है ना, ये बात कहने से बहुत लोगों का विरोध हुआ, ख्याल में आया, लेकिन स्वामी जी कभी किसी से डगे नहीं, किसी से डरे नहीं। जो सत्य बात है, जो आगम के अनुकूल है, वही बात उन्होंने बार बार समझाई, उसके कारण उनके बहुत शत्रु हुए। यानी पहले संप्रदाय छोड़ के आए तो वहां के शत्रु, और यहां आने के बाद मुनियों का सत्य दर्शन बताया तो बाकी लोग शत्रु। लेकिन वो कभी आ तो भूलेला भगवान छे ऐसा करके उनको करुणा बता देता। कहे छे के स्वद्रव्य मां जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, स्ववस्तु जे त्रिकाल आनंद कंद प्रभु छे, ते एक समय ना पर्याय थी पन दूर छे। शरीर थी, कर्म थी, राखती अने पुण्य थी तो ते दूर छे, पन वर्तमान चालती अवस्था थी पन ते दूर छे। आवी चीज मां तेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, लियो आने तीक्ष्ण बुद्धि कहे छे, केम के तेने हे उपादे नो भेद पाड़ी दीधो छे ने, सात तत्वों ने हे करीने जेने आत्मा ने उपादे करी दीधो तेने तीक्ष्ण बुद्धि कहेवामां आवे छे। वास्तव में तो ये पूरा कौन सी भी ऐसी लाइन नहीं होगी जहां अंडरलाइन नहीं करे, बहुत मार्के की बात बताते हैं और एक एक पॉइंट ऐसा देते हैं तो उसके सामने कोई दलील नहीं हो गया। भगवान अंदर में तारी चीज तो आवी छे पन तेनु महात्म ते कदी करियो नथी, ये मूल बात है। हमें आत्मानुभव नहीं होता है, इसका एक ही कारण है। क्या कहते हैं, तारी अंदर में तारी चीज आवी छे पन तेनु महात्म ते कदी करियो नथी। दुनिया ना बधा गामना बधा एमां तारे महात्म चढ़ी छे। भगवान अंदर में तारी चीज तो आवी छे पन तेनु महात्म ते कदी करियो नथी, क्यारेक तेनो महिमा तने आयो नथी, अरे तेनु महात्म सांभळ्यो पन नथी। और आगे की बात, तने का एक समय ना पर्याय नो महिमा आयवो, का दयादान ना विकल्प नो महिमा आयवो, तेथी ते महिमा ने कारणे तारा भगवान आत्मा नो महिमा तने थयो नथी। प्रभु आत्मा तो पूर्णानंद स्वरूप छे, जेनी बुद्धि बाहर थी एटले पर्याय बुद्धि थी ने पर्याय वाला साते तत्वों थी हटी ने पाछु कार्य तो पर्याय में थाय छे। हो भारे बात भाई, आहा, एक बाजू कोई के साते पर्याय थी हटी ने छता पण हटवू तो पर्याय मां थाय छे, पर्याय द्रव्य मां एकाग्र थई तो हटी गयो एम कहेवामां आवे छे। यानी एक ही शब्द के ऊपर कितने गुलाट मारी है हा? कि भाई पर्याय से तुझे हटना है, लेकिन ये हटना तो तुझे पर्याय में ही हटने है, ख्याल में है ना। लेकिन जो हटी हुई पर्याय है उसको भी ये कहा गया है, ये थोड़ी हट के बात है ना। ठहरो कहाँ गया ये प्रभु आत्मा तो पूर्णानंद स्वरूप छे, ये बता दो। भारे बात भाई, आहा एक बाजू कहूं के साते पर्याय थी हटी ने, साते पर्याय यानी कौन सी कि जीव अजीव वगैरह वगैरह सात तत्व वाली पर्याय रूप है ना, तेना थी हटी ने छता पण, यानी ये हटना जो होना है वो किस में होगा, तो हटवू तो पर्याय में थाय छे, यानी हटना जो हो रहा है मतलब हटना यानी क्या, उसके सात पर्याय रूप जो सात बहिर तत्व है जो परद्रव्य है उस पे अपना कॉन्सेंट्रेशन हटाना है और अपने स्व में लगाना है। तो ये जो हटाना और लगाना दोनों कार्य एक समय में होंगे, वो होंगे तो पर्याय में होंगे। तो क्या कहते हैं कि हटवो तो पर्याय में थाय छे, पर्याय द्रव्य में एकाग्र थई तो हटी गयो एम कहेवामां आवे छे। यानी क्या कह रहे कि जब यह जीव, अभी मान लो कि अभी यहां सात लोग बैठे हैं और मेरा उपयोग बार बार इनके तरफ जा रहा है, सात लोगों की तरफ, लेकिन ये जो उपयोग है वो सात लोगों की तरफ या सात द्रव्यों की तरफ या सात बहिर तत्वों की तरफ या सात पर्यायों की तरफ से हटाकर स्व में लगाना है, तो ये कार्य तो पर्याय में हो रहा है। तो जब ही वो स्व में लग गया तो उसी समय ये सातों से हट गया, ऐसा कहते हैं। पर्याय द्रव्य में एकाग्र थई तो हटी गयो, पर द्रव्य माती हटी गयो, सात द्रव्य माती सात तत्वों माती हटी गयो एम कहेवामां आवे छे। आहा ते साते पर्याय ने एटले भाव ने छोड़ी ने एम कहूं छे, तो छोड़वू अने उपादेय करवू तेमा शुं समय भेद छे कि ना। मैंने अभी बात बताई ना, ये तो कथन दो प्रकार से किया गया है, क्रिया तो एक ही होगी, कौन सी, स्व में जाने की। ये तो पर से हटा, ये तो निगेटिव बात हो गई कि पर में नहीं रहा तो नहीं वाली तो नास्ति से बात है, और स्व में एकाग्र हुआ तो अस्थि की बात है, दोनों एक समय की बात है। इसलिए पूछा फिर बाद में कि एम कहूं तो छोड़वू अने उपादेय करवू शू तेमा समय भेद छे, ना ए तो समझावा माटे कहेवामां आवे छे कि आ भेदनु लक्ष्य छोड़वू, केम के जारे पर्याय ए भेदनु लक्ष्य छोड़े छे त्यारे ते पर्याय ज अहींया स्वरूपमां आवे छे। भारे झीणु भाई, अरे कहीं झीणु नहीं आवे तो तमे समझदार थई गया छे बधा। ऐसा लगता है कि अभी हमको जितना नॉलेज है, मुझको मैं मेरी बात सोचता हूं, और इस समय गुरुदेव होते तो मुझे और भी कुछ अधिक माल मिलता। जब हम उनके पास जाते थे तो एबीसीडी नहीं जानते थे, धर्म की एबीसीडी नहीं जानते थे। कभी कभी अफसोस होता है, क्या करें, लेकिन अभी क्या है, आत्या भाई को मिशा होते तो ऐसा बोलने का। भारे झीणू छे भाई, आवो धर्म झीणो पड़े एटलो एटले पछी शुभरागती धर्मता एवो मार्ग करी नाख्यो एवो अज्ञानी कहे छे। यानी उनको भी एडवाइस देने वाले बहुत आते थे, क्या कि तमे कहीं जरा सेलू करो, और लोग तो ऐसे कहते क्या तुम जैन धर्म इतना बड़ा 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 बोलते हो, कितने पूरे दुनिया में जैन धर्म जैन दर्शन के फॉलोअर जैनी कितने, तो हम हाथ से गिने तब भी एक करोड़ के ऊपर नहीं जाते, और विश्व में कितने करोड़ है, इतने अब जो है, तो क्या है तुम्हारा धर्म, ऐसा पूछते हैं। क्योंकि ये सेलो ने सट ये सारी बातें हैं ना कि धर्म राग करो ने धर्म था है। शेरा वाली माँ के जाते पास और बेचारे मर के आते वापिस। कितने ऐसे हो गए, क्या करें। अभी वो जाने में थोड़ी सी कठिनाई लगती तो हरे रे रे बहुत बहुत, वो कैसे गए होंगे, उसकी महिमा थी। शू कहे जो एटले पछी फिफ्थ लाइन शुभ राग थी धर्मता एवो मार्ग करी नाखो एवो अज्ञानी कहे छे। जाते जाते मखमली भी जोड़ दिया साथ में प्रभु तू आड़े रस्ते चाली चालो गयो छे हो पन तने खबर नथी भाई। अरे रे अनंत काले निगोद माते निकले ने आवो मनुष्य भव मांड आयो छे। बहुत मुश्किल से तुझे मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, तेमा जो भवना अभावनी आवी वात नो आश्रय एटले निर्णय न करियो तो ए कागड़ा कुतरा ना भव जेवो भव छे। देखिए ये तेरा मनुष्य भव भी कागड़ा कुतरा जैसा गया बीता है। भाई 5 करोड़ भेगा थई गया कि आबरू वधी गई तेथी तू ऊंचो आव्यो छो एम बिल्कुल छे नहीं, तू उल्टा नो नीचे उतरियो छो। स्वद्रव्य मां जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे जेनो वर्तमान ज्ञान पर्याय अर्थात बुद्धि पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी ने स्वद्रव्य मां लागी छे ते मुनि छे जीनू पड़े एवू छे। केम के सूक्ष्म विषय छे ने शू कहे छे कि आ देह तो जड़ माटी धूल छे, आ काई आत्मा नथी अने अंदर मां जे जड़ कर्म छे ते पन परची छे। जड़ कर्म यानी 8 कर्म। हरीश भाई मैं भूला नहीं हूं लेकिन मैंने पूछा नहीं है आज, दूसरी बात वो तो याद है मुझे, ये जड़ कर्म यानी क्या समझते हैं आप, ये 8 द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वगैरह। तो कल उसके नाम याद करना, रोज थोड़ा थोड़ा देना चाहिए हाँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप सबके साथ रहे, हमारे साथ रहे, हम बोले जाए जड़ कर्म और पूरे आगे आगे बढ़ते जाए तो आप बोले ये जड़ कर्म क्या होता है, कोई बात नहीं, ये हमारा गुरु है ना उसके पास से सीख लेना आगे का हाँ। अच्छा दिया कि नहीं दिया, कौन दिया, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, आपने इसलिए दिया कि आपको याद नहीं करना पड़े इसलिए है, वेरी गुड बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा है। अपने साधर्मी के प्रति ऐसा ही प्रेम रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या कह रहे देखो कहां गया ये, हाँ अंदर मां जे जड़ कर्म छे, जड़ कर्म यानी वो 8 कर्म जो है ना भाई, द्रव्य कर्म जिसको कहते हैं उसका दूसरा नाम जड़ कर्म भी है, और वो 8 कर्म जो है उसके नाम भी बहुत आसान है, बस 2 मिनट में मैं सिखा दूंगा 8:30 के बाद। तेपन परची छे जारे अंदर मां जे भगवान आत्मा छे ते अनादि अनंत शाश्वत अविनाशी ध्रुव वस्तु छे। आवो जे पूर्णानंद प्रभु ध्रुव त्रिकाळी भगवान आत्मा छे तेनी जे दशा हालत पर्याय अवस्था थाय छे। ये सब पर्याय वाची शब्द है, तेनी जे दशा कहो हालत कहो अवस्था कहो पर्याय कहो, ते पर्याय नु पण लक्ष्य छोड़ी ने तारी दृष्टि स्वद्रव्य मां लगावी दे। आहा हा आई तो धर्म केम था ए वात थाय छे भाई। क्या कहना है कि ये सारे पर पदार्थों पर से दृष्टि हटाकर पर्याय पर से भी दृष्टि हटाकर दृष्टि स्वद्रव्य मां लगावी दे और यही से धर्म होगा। पण अहिया बीजी कोई वात नथी, केम पैसा कमावा के दान देवू वगैरे कोई वात अहिया नथी, अहिया तो आत्मानी वात छे भगवान। जो तारे कल्याण करवू होय तो तारी पोतानी जे एक समयनी ज्ञानादिनी अवस्था छे तेमज जे पुण्य पापना परिणाम छे ते बधानी दृष्टि छोड़ी दे अने पोताने निज स्वरूप जे त्रिकाळ आनंद कंद ध्रुव अविनाशी भगवान आत्मा छे तेमा बुद्धि लगावी दे। पहले क्या बताया, जो तारे कल्याण करवू हो तो नहीं बात छे, कंडीशन डाली। तो क्या कहते हैं, जो तारे जो तुझको अपना कल्याण करना है तो वो जो एक समय की जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय ली तो इसमें एक समय की सम्यक ज्ञान की लो, केवल ज्ञान की लो, एक ही बात है। और पुण्य पाप के परिणाम वो तो विकारी परिणाम चारित्र गुण के, तो इनाती दृष्टि छोड़ी दे, क्योंकि ये जीव तो उसी में लगा है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैं इतना ज्ञानी हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो तो एक समय की पर्याय उसको भी छोड़ कहते हैं। या तो मैंने इतना पुण्य किया, इतना ये किया, उतना वो किया, उसमें अपनापन मानो, तो कहते उसमें ये बदानी दृष्टि छोड़ी दे। और जो स्व जो स्वरूप है, निज स्वरूप कैसा है, वह त्रिकाली टिकने वाला आनंद कंद प्रभु अविनाशी, ऐसा जो है तेरा स्वभाव भाव, उसको भगवान आत्मा यहां कहने में आ रहा है, उसमें तू एकाग्र था, एकाग्र हो जा, ऐसा कहते हैं, तो तारू कल्याण थशे, नहीं तर कल्याण थशे नहीं। न्याय समझाई छे, न्याय नो अर्थ ए छे कि लई जवू, न्याय मां नींद आतू छे ने, जेवू पोतानू स्वरूप छे त्या ज्ञान ने लई जवू, तेनू नाम न्याय छे। प्रवचन सार में भी यही बात आई थी, धसवू धसना चाहिए, तो वो तो हिंदी शब्द है, यहां तो गुजराती में दोरी जवू, तो यहां लई जवू, यानी न्याय क्या है कि जेवू पोतानू स्वरूप छे त्या ज्ञान ने लई जवू, तेनू नाम न्याय छे। आहा, जेने पोतानी वर्तमान दशानु अने पुण्य पापना भावनु पण लक्ष्य छोड़ी दीधु छे, पण लक्ष्य छोड़ी दीधु एम क्यारे कहेवाय, के जारे आ वस्तु भगवान आत्मा मां अर्थात त्रिकाली आनंद धाम एक रूप स्वद्रव्य मां स्वद्रव्य स्वभाव मां तीक्ष्ण बुद्धि लागे छे, त्यारे पोतानी वर्तमान दशानु अने पुण्य पाप भावनु लक्ष्य छोड़ी दीधु एम कहेवाय छे, અને તેને આ આનંદ કંદ આત્મા ઉપાદેય છે। બહુ સૂક્ષ્મ વિષય છે, અરે તેને આ અંતરાત્માની વાત ક્યારેય સાંભળી નથી, અને આ આત્માની વાત વિનાની જે બીજી બધી વાતો છે તે થોતે થોથા છે। અહીં કહે છે ક્યારે ભગવાન તારી કાયમી અસલી ચીજ તો નિજ ધ્રુવ તત્વ છે, અનાદિ અનંત અવિનાશી તું ચીજ છો, આવી ચીજ ઉપર ક્યારે દ્રષ્ટિ જાય કે જ્યારે વર્તમાન અવસ્થા પર્યાય અને પુણ્ય પાપથી દ્રષ્ટિ હટીને અર્થાત અંશ ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટીને ત્રિકાળી અંશી એવા દ્રવ્યમાં તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ લાગે ત્યારે, અને તે સમયે તેને આ આત્મા છે એવો સ્વીકાર થાય। અભી ઇન્હોને ઇતના આસાન સમજાયા હૈ કે ઇસકે ઉપર મેં ક્યા એક્સપ્લેન કરું, ઓર અગર કોઈ નહીં સમજતા તો મેરે કો રુકાના, ક્યોંકિ યહાં બાર બાર લિખતે કે ઝીણી વસ્તુ છે, પણ અભી રોજ રોજ ઇનકો સમજકર ઇનકા તત્વ પઢ પઢ કરકે યે સૂક્ષ્મ ક્યું બોલા જાતા હૈ ધ્યાન મેં નહીં આતે, યે તો બહોત समझे ऐसी बात है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और उनके सामने तो बहुत सारे हमारे जैसे पहले ही जमाने के मैं जैसा था वैसे श्रोता होंगे, तो इसलिए तो बार बार कहते आ भी सूक्ष्म बात छे, आ तो झीणी बात छे, क्योंकि पहले कुछ साल पहले कि ये सात तत्व जो है जिसमें जीव तत्व को भी लिया है उसको है यह है ये कहते थे तो बिल्कुल बात पटती नहीं थी, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वहां तो एक समय की पर्याय ली है, व्यवहार जीव लिया है उसको, व्यवहार जीव है ना, मनुष्य आदि जो पर्याय है वह तो व्यवहार जीव है ना, निश्चय से तो जिसका कोई गति ही नहीं उसको, क्या कहते हैं, हाँ जी, हाँ आवी सूक्ष्म वाच्य, आहा हा अनंत काल थी रखड़े छे, તેમાં આવો મનુષ્યભાવ અનંત વાર મળ્યો છે, પણ ધર્મ શું ચીજ છે તેની તેને ખબર નથી। તે માને ભલે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, પણ ભાઈ ધર્મ શું ચીજ છે તેની તને ખબર નથી. કહે છે કે સ્વદ્રવ્ય એવા પૂર્ણાનંદ પ્રભુ ભગવાન આત્મામાં અનંત આનંદનું ધામ એવી અવિનાશી ચીજમાં જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ લાગી છે તેને ત્યાં બુદ્ધિને જોડી દીધી છે. જેને ત્યાં બુદ્ધિને જોડી દીધી છે એવા આત્માને આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે. ઉપાદેય નામ અંતરબુદ્ધિમાં પોતાના આત્માનો અંગીકાર કર્યો. ઉપાદેય કા ક્યા અર્થ કહ્યા ઉન્હોને કે અંતરબુદ્ધિમાં પોતાના આત્માને અંગીકાર કર્યો, પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો તો આત્માને આત્મા ઉપાદેય થયો એમ કહેવામાં આવે છે. અને આ રીતે આત્માને ઉપાદેય કરવાથી સમ્યક દર્શન અને ધર્મ થાય છે. અરે હજી તો આ વાત સમજણમાં પકડવી કઠણ છે. આહા, એવા આત્માને ગજબ વાત છે ભાઈ. અહીંયા તો પાતાળ કૂવામાંથી પાણી નીકળે તો પાણી નીકળ્યું કહેવાય એમ કહે છે. ભગવાન આત્મા અંદર ઊંડો પાતાળ કૂવો છે. અનંત આનંદ, અનંત જ્ઞાન અને અનંત શક્તિનો તે ભંડાર છે. મેં ક્યાં બોલા? અનંત શાંતિનો તે ભંડાર છે. મેં ક્યાં કહ્યું? શાંતિ, શક્તિ. અચ્છા અચ્છા, તો ભી તો એ શક્તિ હે. ચલો, તો એ ધ્રુવ આત્મામાં અધ્રુવ અને અનિત્ય એવા પર્યાયનું લક્ષ્ય છોડીને જેને પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ લગાવી છે તેને આત્મા ઉપાદેય છે એમ કહેવામાં આવે છે. અને તે જ તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળો છે. તે સિવાયના દુનિયામાં જે બધા ઢાપણવાળા કહેવામાં આવે છે તે બધા મૂર્ખાઈવાળા છે. ભગવાન તારી ચીજ અંદર મહાપ્રભુ પણ વિરાજે છે, પણ એવા આત્માને કોને ઉપાદેય કર્યો કહેવાય કે જેની બુદ્ધિ વર્તમાન અવસ્થાથી હઠી ગઈ છે અને આવા આત્મામાં લાગી છે તે આત્માએ આત્મા અંગીકાર કર્યો હોવાથી આત્મા ઉપાદેય કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. કહે છે કે એવા આત્માને પ્રશ્ન, આવા આત્માને એટલે મુનિને જ નિશ્ચય સંકિત હોય ને? ના, એમ નથી. ચોથા ગુણસ્થાને પણ નિશ્ચય સંકિત હોય છે. યે ભી બાત બહુત સાલ તક ચલી થી કે બહુત સે લોગ એસા માનતે થે કે જો સાતવે ગુણસ્થાન વર્તી જીવ હૈ ઉન્હી કો સમ્યક દર્શન હોતા હૈ. એસે માનને વાલે બહુત લોગ, ઓર બહુત સે એસે ભી હૈ કે જો માનતે કે ચોથે ગુણસ્થાન મેં સમ્યક દર્શન હોતા હૈ, ઓર ઉસકા આગમ કા આધાર તો બહુત હૈ. અભી હમકો જ્ઞાત હૈ વૈસા તો ચૌથે ગુણસ્થાન કા નામ ક્યા હૈ? સમ્યક દ્રષ્ટિ ને, આવિરત સમ્યક્ત્વ. તો સમ્યક્ત્વ હૈ ચૌથે ગુણસ્થાન વર્તી, લેકિન વો અપેક્ષા એસી હૈ કે જૈસે મુનિયો કો અંદર મે સૂક્ષ્મ મતલબ આનંદ કા પ્રચુર વેદન હૈ, સ્વરૂપ કા વેદન ભી બહુત કાલ તક ટિકતા હૈ, ઉસ અપેક્ષા સે ઇસકો નગણ્ય હૈ, ઇસલિયે ઉસકો ચૌથે મે નહીં હોતા એસા માનને વાલે હૈ. ચલો, એટલે પૂછા કિસીને કે આવા આત્માને એટલે મુનિને જ નિશ્ચય સંકિત હોય ને? કે ના, એમ નથી. ઇતના બોલ દે તો બાકી હમકો સમજને કે લે વો બ્રેકેટ મેં એક્સપ્લેનેશન ડાલા હૈ કે ચોથા ગુણસ્થાને પણ નિશ્ચય સંકિત હોય છે. પણ એવા આત્માને શબ્દ વાપર્યો છે ને, એ તો ટીકાકાર પોતે મુનિ છે એટલે પોતાની દશાથી વાત કરી છે. તો કહે છે કે એવા આત્માને આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે. આવા આત્માને આ આત્મા અંતરના વલણની દશામાં આદરણીય છે, એટલે કે પૂર્ણ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાન આત્માનો તેને આદરભાવ છે. ટીકા ફરીને લઈએ. આ હેય અને ઉપાધિ તત્વના સ્વરૂપનું કથન છે. હેયનો અર્થ પછી કરશે કે ઉપાધેય નથી તો શું આદરણીય નથી અને શું આદરણીય છે તેનું આ કથન છે. ये दोबारा ले रहे हैं, अभी तक हमने देखा था, वहां तक फिर से जा रहे। जीवादि सात तत्वों नो समूह, शब्द तो जीवादि छे पण तेमा जीव एटले जीवनो एक समय नो पर्याय लेवो। अभी देखो कितना क्लियर दिया इधर, जीवादि छे तो तेमा जीव एटले जीवनो एक समय नो पर्याय लेवो, अर्थात पर्याय ने नो जीव लेवो। पर्याय ने नो जीव लेवो एने क्या, ये मनुष्य पर्याय है, कनार की पर्याय, तीरंज पर्याय, वो व्यवहार पर्याय, पर्याय ने का विषय। आवो एक समय नो पर्याय, अजीव आश्रव भावबंद संवर निर्जरा ने मोक्ष पुण्य पाप आश्रव में आ गया। ये सात तत्वों जे पर्याय रूपे छे ते परद्रव्य होवाने लीधे, ते सात तत्वों त्रिकाळी स्वद्रव्य में नहीं होवाने लीधे, एटले के न्यायक भाव रूप त्रिकाळी द्रव्य स्वभाव सात तत्व रूप नथी। द्रव्य स्वभाव कहो ने तो ते एक रूप त्रिकाळी भाव स्वद्रव्य छे, अने ते सिवायना आ पर्यायो संवर निर्जरा ने मोक्षादि पण त्रिकाळी भाव नहीं होवाथी तेमने परद्रव्य कहेवामां आव्या छे। आहा, जीवादि सात तत्वों समूह, ए तो पेला वात करी हती के पांचमी गाथामां एम आवे छे के बहिर्तत्वनी अने अंतस्तत्व एवो जे परमात्मा छे तेनी ते बन्नेनी श्रद्धा करवी ते व्यवहार सम्यक दर्शन छे। क्योंकि दो बातें बताई ना, परंतु तेथी करीने कई अहिया पण ए अर्थ लेवा मागे तो एवो अर्थ नथी, केम के अहिया तो बधा साथे तत्वो पर्याय नयना भाग छे, पर्याय नयनो भाग छे। जीवना एक समयना पर्याय ने अहिया जीव नाम आप्यु छे, एटले के एक समयना पर्याय ने अहिया जीव कयो छे, व्यवहार जीव ने जीव कयो छे। कारण के बधा साथे तत्वो मां व्यवहारना प्रकार लेवा छे ने, व्यवहार जीव ने बीजा बधा तत्वो पर्याय रूप छे ने, तेथी जीव एटले आत्मानो जे एक समयनो क्षयक्षमिक भावनो पर्याय छे ते। और आगे आगे बात बढ़ा रहे, क्या कहा, त्यां जीव एटले आत्मानो एक समयनो क्षयक्षमिक भावनो पर्याय छे ते। तो यहां क्षायब श्रमिक भाव में किसको लेना, ज्ञान की पर्याय लेना। निगोद में अपन क्षायब श्रमिक भाव छे ने, एटले के जीव तरीके क्षायब श्रमिक भाव लीधो छे, जारे औदयिक भाव तो पुण्य पाप रूप आश्रो बंध में जशे। अने तो ते क्षायब श्रमिक भाव रूप विकास नो अंश प्रकट छे। हाजी, हाँ, क्षायब श्रमिक भाव रूप विकास नो अंश ते प्रकट छे, तेने व्यवहार जीव कहो छे, अर्थात पर्याय ने जीव कहो छे। ए जीव तत्वनी वात थई अने आदि एटले अजीव पुण्य पाप रूप आश्रव भाव तेमा अटकवो ते बंध भाव अथवा अबंध स्वभावनी अपेक्षाए आ पुण्य पाप ते बंध भाव अने संवर निर्जरा मोक्ष मोक्ष मार्ग ने मोक्ष आ बधा पर्यायो छे, अवस्था छे, अने ते बधाने त्रिकाळी द्रव्यनी अपेक्षाए स्वद्रव्य कहेवामां आवे छे। हाजी, मैंने क्या बोला, बिल्कुल अगेंस्ट बोल जाता हूं कभी कभी, क्या कहा, देखो देखो, ते बधाने त्रिकाळी द्रव्यनी अपेक्षाए परद्रव्य कहेवामां आवे छे। एक कोर राम ने एक कोर गाम, एक बाजु त्रिकाळ एक रूप ध्रुव न्यायक भाव में आत्म राम, अने एक बाजु आ सात पर्यायोना समूह रूप गाम। अहिया सात तत्वों ने समूह कयो छे ने, माटे ते गाम छे। आवो झीणु तत्व वीतराग मार्ग आवो झीणो छे। बस आज पूरु थई गयु।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मस्तकणमो सदा देत हो।
तेजो